एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे सुनते ही अक्सर मन में एक डर सा बैठ जाता है। रेडियो धर्मिता।
बिल्कुल, मतलब रेडियो एक्टिविटी शब्द सुनते ही दिमाग में चेर्नोबिल, परमाणु बम।
हाँ, या किसी फिल्म का वो हरे रंग का लिक्विड जो चमकता रहता है।
बिल्कुल वही। लेकिन क्या ये डर, क्या ये जायज है या ये सिर्फ आधा सच है?
यही तो सवाल है। आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वे क्लॉडियो ट्यूनिस की किताब रेडियो धर्मिता पर आधारित है, और एक किताब इस विषय को एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाती है।
और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी भी हो गया है।
बहुत ज्यादा। एक तरफ हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
और तो और, हजारों साल पुराने इतिहास के राज खोलने में भी यही हमारी मदद कर रही है।
सही कहा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस अदृश्य शक्ति के डर के पर्दे को हटाकर इसके पीछे के विज्ञान, इसके इतिहास और हमारी जिंदगी में इसके असली मतलब को समझा जाए।
चलिए तो फिर इस सफर को शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसने हमें ये नजरिया दिया, लेखक क्लॉडियो ट्यूनिस। उनकी प्रोफाइल ही मुझे लगता है इस किताब को खास बना देती है।
हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट नहीं है, वो एक इटालियन परमाणु भौतिक विज्ञानी तो हैं ही, साथ साथ एक पुरातत्व विज्ञानी यानी आर्कियोलॉजिस्ट भी है।
ये तो बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है
ना? एक विशेषज्ञ जो परमाणुओं की दुनिया को समझता है और दूसरा जो प्राचीन सभ्यताओं के राज खोलता है, और वो दोनों काम एक साथ करते हैं।
मतलब वो सिर्फ लैब में बैठकर थ्योरी पर काम नहीं करते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में रेडियो धर्मिता को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो एक बहुत ही कमाल की तकनीक के विशेषज्ञ हैं, जिसे एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं।
ये तो बहुत भारी भरकम नाम लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ?
इससे आप एक तरह की परमाणु छन्नी समझ सकती हैं।
परमाणु छन्नी?
हाँ, एक ऐसी जादुई छन्नी जो लाखों करोड़ों साधारण परमाणुओं के भीड़ में से गिने चुने रेडियोधर्मी परमाणुओं को पकड़ लेती है।
अच्छा।
और इन्हीं गिने चुने परमाणुओं को गिनकर वो हजारों साल पुरानी कलाकृतियों और जीवाश्मों की एकदम सटीक उम्र बता देते हैं।
वाह, मतलब वो उस घड़ी साज की तरह है जो ना सिर्फ ये जानता है कि घड़ी कैसे काम करती है, बल्कि उस घड़ी का इस्तेमाल करके इतिहास की गुत्थियां भी सुलझाता है।
बिल्कुल। उनका ये प्रैक्टिकल अनुभव उन्हें इस विषय पर लिखने का एक अनोखा अधिकार देता है, क्योंकि उन्होंने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया है।
तो ये किताब आखिर हमें बताना क्या चाहती है? इसका मेन मकसद क्या है?
देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है रेडियोधर्मिता से जुड़े डर और गलतफहमियों को दूर करना। ट्यूनिस का तर्क है कि रेडियोधर्मिता कोई इंसानी, कोई शैतानी आविष्कार नहीं है। ये तो प्रकृति की एक बुनियादी शक्ति है। ये तब से मौजूद है जब से ये ब्रह्मांड बना है।
किताब हमें एक कहानी की तरह ले चलती है ना?
हाँ, एक सफर पर। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के पेरिस से, जहाँ एक वैज्ञानिक ने गलती से इसकी खोज कर ली।
फिर मैरी क्यूरी के बारे में बताती है।
हाँ, उनके जुनून और त्याग की कहानी, और फिर हमें परमाणु के बिल्कुल दिल में ले जाती है। ये समझाती है कि तारे क्यों चमकते हैं और हमारी अपनी धरती अंदर से गर्म क्यों है।
और ये किताब रेडियो धर्मिता के दोहरे चेहरे को भी बहुत साफ तौर पर दिखाती है। मतलब एक तरफ ये वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप।
बिल्कुल। एक ही शक्ति पीईटी स्कैन से जीवन बचा भी सकती है और परमाणु बम बनकर जीवन ले भी सकती है।
तो किताब का मकसद किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं है?
नहीं, मकसद है हमें परमाणु साक्षरता देना, न्यूक्लियर लिटरेसी देना, ताकि हम डर के आधार पर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर सोच समझकर फैसले ले सकें।
तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये सब सामने आया कैसे? क्या किसी ने इसे जानबूझकर खोजा था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान के सबसे खूबसूरत हादसों में से एक है।
अच्छा।
साल था 1896, शहर था पेरिस। हेनरी बैकरेल नाम के एक वैज्ञानिक यूरेनियम के कुछ कंपाउंड्स पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये पत्थर, जिन्हें यूरेनियम लवण कहते हैं, बिना सूरज की रोशनी के भी एक फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर रहे थे,
जैसे कोई अदृश्य रोशनी उनसे निकल रही हो।
ये तो किसी जासूसी कहानी की तरह लगता है। एक अदृश्य सुराग, और फिर इस रहस्य को सुलझाने आई मैरी क्यूरी।
मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी।
बिल्कुल। और उन्होंने जो किया वो विज्ञान के इतिहास में मेहनत और लगन की एक मिसाल है।
उन्होंने कई टन पिच ब्लेंड को छाना था, है ना?
कई टन। एक टूटे फूटे शेड में सालों तक उसे उबाला, छाना और शुद्ध किया, अपनी सेहत की परवाह किए बिना।
और इसी मेहनत से उन्होंने दो नए तत्व खोज निकाले।
हाँ,
पोलोनियम और रेडियम, जो यूरेनियम से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे।
और रेडियोधर्मिता नाम भी मैरी क्यूरी ने ही दिया था।
जी, उनकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि ये गुण किसी केमिकल रिएक्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि एटम का, परमाणु का अपना अंदरूनी गुण है।
इस एक खोज ने तो विज्ञान की दुनिया को हिला कर रख दिया होगा।
बिल्कुल, क्योंकि तब तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता।
खोज तो हो गई, पर अब सवाल था कि ये ऊर्जा आखिर आ कहाँ से रही है।
इसका जवाब मिला परमाणु के केंद्र में, मतलब न्यूक्लियस में,
नाभिक में।
हाँ, नाभिक, जहाँ प्रोटोन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। रेडियोधर्मिता तब होती है जब कोई नाभिक अस्थिर होता है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है।
तो स्थिरता पाने के लिए वह अपने अंदर से कुछ बाहर फेंकता है।
एकदम सही, इसे क्षय या डीके कहते हैं, और यह तीन मुख्य तरीकों से होता है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय।
पर यही वो प्रक्रियाएं हैं जिन पर आगे की सारी तकनीकें आधारित हैं।
बिल्कुल, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि यह सब सिर्फ लैब में नहीं होता, ये तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा इंजन है।
हाँ, यही इस किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है
कि जिन भारी तत्वों की हम बात कर रहे हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम, ये हमारी धरती पर नहीं बने।
ये तो सुपरनोवा में बने थे
अरबों साल पहले, जब विशाल तारे अपनी जिंदगी के अंत में एक जबरदस्त धमाके के साथ फटते हैं। हम सब सचमुच तारों की धूल से बने हैं।
तो आप कह रहे हैं कि ये रेडियोधर्मी तत्व तारों के धमाकों से निकलकर हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय इसमें समा गए?
बिल्कुल, और आज भी अरबों साल बाद ये तत्व पृथ्वी की पपड़ी और मैंटल में धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं।
और इस प्रक्रिया में जो गर्मी निकलती है वही हमारे ग्रह के कोर को पिघला कर रखती है।
एग्जैक्टली, यही गर्मी टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती है, पहाड़ों को जन्म देती है और ज्वालामुखियों को ऊर्जा देती है। जिस जमीन पर हम चलते हैं वो अंदर से एक विशालकाय परमाणु रिएक्टर की तरह गर्म है।
ये सोचना ही हैरान करने वाला है, मतलब रेडियोधर्मिता के बिना हमारी पृथ्वी एक ठंडा मरा हुआ पत्थर होती।
हाँ,
और ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है ना, मैंने पढ़ा है कि ये शक्ति तो हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है।
हाँ, हमारा शरीर में पोटेशियम 40 नाम का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है।
केले में भी होता है?
केले में काफी मात्रा में होता है, और कार्बन 14 जो कॉस्मिक किरणों की वजह से लगातार हमारे वायुमंडल में बनता रहता है, वो भी सांस और भोजन के जरिए हमारे शरीर का हिस्सा बनता है।
तो रेडियोधर्मिता हमसे बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है।
हाँ,
ये जीवन का हिस्सा है।
और प्रकृति की इसी प्रक्रिया ने हमें समय को नापने का एक ऐसा तरीका दिया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
अर्ध जीवन या हाफ लाइफ?
जी, हाफ लाइफ, ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। हर रेडियोधर्मी तत्व की एक हाफ लाइफ होती है।
यह वह निश्चित समय है जिसमें उस तत्व के आधे परमाणु क्षय हो जाते हैं।
बिल्कुल, और ये दर इतनी सटीक और भरोसेमंद है कि ये एक ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह काम करती है।
इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो कार्बन डेटिंग है।
हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग, जब कोई पेड़ या जानवर जिंदा होता है तो वो लगातार कार्बन 14 लेता रहता है,
लेकिन मरने के बाद यह सिलसिला रुक जाता है।
हाँ, और उसके शरीर में मौजूद कार्बन 14 अपनी 5730 साल की हाफ लाइफ के हिसाब से कम होने लगता है।
तो वैज्ञानिक बस इसी बची हुई मात्रा को नापकर बता सकते हैं कि उस जीव की मौत कितने हजार साल पहले हुई थी।
और इसी तकनीक ने हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मिस्र के ममियों तक के बारे में ठोस जानकारी दी है।
तो इसी आधी उम्र की गिनती ने हमें अतीत के राज खोलने की चाबी दे दी, लेकिन परमाणु के इसी गुण ने हमें भविष्य को खतरे में डालने की ताकत भी दी।
हाँ, यही पर इस शक्ति का दूसरा पहलू सामने आता है,
और वो है परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन।
जब एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन से तोड़ा जाता है तो वो दो छोटे परमाणुओं में टूट जाता है,
और साथ में निकलती है भारी मात्रा में ऊर्जा
और कुछ और न्यूट्रॉन। ये नए न्यूट्रॉन आगे और परमाणुओं को तोड़ते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है,
और यहीं पर वो दोराहा आता है।
हाँ, अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम उसकी ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं, जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है।
और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए
तो कुछ ही पलों में इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो एक परमाणु बम का विनाशकारी रूप ले लेती है।
और ठीक इसी तरह मेडिकल साइंस में भी इसका दोहरा उपयोग है।
बिल्कुल, पीट स्कैन में एक रेडियोधर्मी ट्रेसर शरीर में भेजा जाता है जो कैंसर कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाता है
और उन्हें उजागर कर देता है।
हाँ, जिससे इलाज में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेडियोथेरेपी में रेडिएशन की तेज किरणों का इस्तेमाल उन्हीं कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
एक ही शक्ति दो अलग अलग काम।
तो इस पूरी चर्चा का जो सार निकलता है वो है इसका दोहरापन, इसकी ड्युअलिटी। ये ना अच्छी है ना बुरी।
ये आग की तरह है, आप उससे खाना भी बना सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं।
बहुत अच्छा उदाहरण है। नतीजा इस पर निर्भर करता है कि इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करता है।
और शायद इसी दोहरेपन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कोई बाहरी या अजीब चीज नहीं है।
सही कहा, ये तो हमारे और इस ब्रह्मांड के बनने के समय से ही मौजूद है। अगर हम इसकी स्वाभाविकता को समझ लें
तो शायद इसका अच्छा या बुरा होना हमारे नजरिए पर निर्भर करने लगता है
और मन में बैठा बेवजह का डर कम होता है।
और एक और बड़ा संदेश है समय का। इस खोज ने हमें ब्रह्मांड की घड़ी दी।
इससे पहले हम सिर्फ अनुमान लगा सकते थे कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, लेकिन रेडियोधर्मिता ने हमें पृथ्वी और जीवन के अरबों साल पुराने इतिहास को वैज्ञानिक रूप से मापने की शक्ति दी।
इसने समय के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया।
और आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, खतरों को लेकर एक समझदारी भरा नजरिया अपनाना। लेखक कहते हैं कि वैज्ञानिक जोखिम और आम जनता के डर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है।
इसे रेडियोफोबिया भी कहा जाता है।
हाँ, उनका कहना है कि हमें रेडिएशन से नहीं बल्कि उसके बेवजह के डर से लड़ने की जरूरत है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बहुत खूबसूरती से सामने रखती हैं।
हाँ, जैसे एक जगह लेखक कहते हैं, रेडियोधर्मिता कोई अप्राकृतिक मानवीय आविष्कार नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि ये ब्रह्मांड के ताने बाने में बुनी हुई एक मौलिक शक्ति है।
और आगे कहते हैं, यही वो इंजन है जो हमारे ग्रह को भीतर से गर्म करता है और तारों को शक्ति देता है।
यह एक पंक्ति ही पूरे नजरिए को बदल देती है।
बिल्कुल, ये इसे किसी खतरे की तरह नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति के रूप में दिखाती है।
एक और विचार इसके दोहरेपन पर है। परमाणु के नाभिक में बंद शक्ति मानवता के लिए उसका सबसे बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करती है।
एक ही प्रक्रिया परमाणु विखंडन में प्रचुर स्वच्छ ऊर्जा का वादा और पूर्ण विनाश का खतरा दोनों छिपा है।
यह हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
और जोखिम के बारे में वो पंक्ति बहुत शक्तिशाली है।
कौन सी?
हमारी सामाजिक चुनौती विकिरण से मुक्त दुनिया हासिल करना नहीं है जो असंभव है, बल्कि रेडियोफोबिया से मुक्त दुनिया बनाना है।
वाह, मतलब असली लड़ाई अज्ञानता और डर से है, न कि रेडिएशन से।
तो सवाल उठता है कि ये सारी जानकारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है।
सबसे पहले तो यह हमें एक बेहतर और जागरूक नागरिक बनाती है।
कैसे?
देखिए, जब भी हमारे आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने या नहीं लगाने पर बहस होती है तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों या डर के आधार पर राय बनाने के बजाय
तथ्यों और जोखिमों पर एक संतुलित चर्चा कर सकते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, ये हमें अपने स्वास्थ्य से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद करती है।
मतलब अगर कोई डॉक्टर एक्सरे या पेट स्कैन की सलाह दें,
हाँ, तो हम घबराने की बजाय ये समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है। हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इससे होने वाले फायदे और मामूली जोखिम के बीच क्या संतुलन है।
यह हमें अपने शरीर और इलाज के बारे में ज्यादा अधिकार देता है।
और मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें प्रकृति के लिए एक गहरी सराहना से भर देता है।
ये बहुत अच्छी बात कही।
अगली बार जब कोई रात में तारे देखे तो याद करे कि उनकी रोशनी परमाणु संलयन से आ रही है। जब जमीन पर चलें तो महसूस करें कि आपके पैरों के नीचे की जमीन परमाणुओं की धीमे क्षय से गर्म है।
यह जानना कि हम सब रेडियोधर्मी तारकीय धूल से बने हैं, ये एक अद्भुत एहसास है।
इस पूरी बातचीत से अगर मुझे एक बात चुननी हो जो मेरे साथ रहेगी तो वो यही है कि हमारा ग्रह अंदर से एक तरह की परमाणु भट्टी के कारण ही भूवैज्ञानिक रूप से जीवित है। हम हमेशा ऊर्जा के लिए सूरज की तरफ देखते हैं, पर हमारी धरती के अंदर भी एक शक्ति है जो उसे चला रही है। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला विचार था।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ज्ञान ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। इस विषय को समझने से पहले रेडियो एक्टिव मेरे लिए सिर्फ एक खतरनाक शब्द था,
और अब,
लेकिन इसके पीछे के विज्ञान, इसके इतिहास और प्रकृति में इसकी भूमिका को जानने के बाद ये एक शक्तिशाली औजार और एक प्राकृतिक घटना बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और जिसे हमें जिम्मेदारी से संभालना सीखना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।